प्रेरितों के काम अध्याय 25। तीन दिन के बाद फेस्तुस प्रांत में आया, वे कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब महायाजक और यहूदियों के अगुओं ने पौलुस के खिलाफ शिकायत करते हुए विनती की। उन्होंने पौलुस को यरूशलेम बुलाने के लिए कहा, ताकि वे रास्ते में छिपकर उस पर वार करके मार डालें। लेकिन फेस्तुस ने कहा
कि उसे कैसरिया ही में रहने दिया जाए, वह जल्दी ही वहां जाएगा।
इसलिए उसने उत्तर दिया,
तुम में से जो प्रमुख व्यक्ति हैं मेरे साथ चलें, और अगर उसकी कुछ गलती है तो उसे साबित करें।
वह उनके साथ वहां 8 या 10 दिन रहने के बाद कैसरिया चले गया। अगले दिन न्याय आसन पर बैठते ही उसने पौलुस को उसके सामने पेश किए जाने की आज्ञा दी। जब उसे वहां लाया गया, तभी यरूशलेम से बहुत यहूदियों ने आकर उसे घेर लिया और ऐसे आरोप लगाए जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं था। उसने अपने बचाव में कहा,
मैंने किसी भी तरह से यहूदियों की धार्मिक आस्था को चोट नहीं पहुंचाई है, और न ही मैंने मंदिर या कैसर के खिलाफ कुछ कहा है।
लेकिन यहूदियों को खुश करने के लिए फेस्तुस ने पौलुस को जवाब में कहा,
क्या तुम यरूशलेम जाकर मेरे सामने इंसाफ के लिए खड़े होने के लिए तैयार हो?
तब पौलुस ने कहा,
मैं आज कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूँ, यही मेरा इंसाफ होना चाहिए। जैसा तुम जानते हो, मैंने यहूदियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। अगर मैंने कुछ गलत किया है, मौत की सजा के लायक कुछ किया है, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों में कुछ दम नहीं है, तो उनके हाथों में मुझे सुपुर्द करने का हक किसी को नहीं है। कैसर से मैं यही कहना चाहता हूँ।
तब सभा के साथ सलाह मशवरा करने के बाद फेस्तुस ने जवाब दिया,
क्या तुमने कैसर के सामने अपील की है? तुम्हें कैसर के सामने खड़ा होना पड़ेगा।
कुछ दिनों के बाद राजा अग्रिप्पा और बर्निस फेस्तुस से भेंट करने कैसरिया आए। कई दिन गुजरने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के विषय को राजा के सामने पेश करते हुए कहा,
फेलिक्स ने एक व्यक्ति को जेल में रख छोड़ा है। जब मैं यरूशलेम में था, उस समय महायाजकों और यहूदी बुजुर्गों ने उसके खिलाफ फैसला सुनाने के लिए मुझसे कहा था। मैंने जवाब में उनसे कहा कि ये रोमी लोगों की रीति नहीं है कि किसी आरोपी को मौत की सजा सुनाए जब तक कि आरोपी को अपने विरोधियों के सामने अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का मौका ना मिले। इसलिए जब वे यहाँ पर आए थे, बिना देर किए हुए दूसरे दिन ही मैं न्याय आसन पर बैठा और उस व्यक्ति को भीतर लाने का हुक्म दिया। जब आरोपी खड़े हुए तो जैसा मैंने सोचा वैसा आरोप वे उसके खिलाफ नहीं लाए थे। उनके अपने धर्म से संबंधित उसके खिलाफ कुछ सवालों के साथ यीशु नामक व्यक्ति के मरे हुओं में से जी उठने के बारे में पौलुस के विश्वास से संबंधित सवाल भी थे। क्योंकि इन सब सवालों के बारे में मुझे शक था, मैंने उससे जानना चाहा कि वह इस विषय पर इंसाफ किए जाने के लिए यरूशलेम जाना चाहेगा या नहीं। लेकिन जब पौलुस ने कहा कि ऑगस्टस का फैसला उसे मंजूर होगा, मैंने आज्ञा दी कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेज दूं, तब तक उसे यहीं रखा जाए।
तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा,
मैं इस व्यक्ति के मुंह से सब कुछ सुनना मांगता हूं।
अगले दिन जब अग्रिप्पा और बर्निस बड़ी शानो शौकत के साथ आए और उसको सुनने के लिए कमांडरों और गणमान्य लोगों के साथ महल में दाखिल हुए, तब फेस्तुस की आज्ञा अनुसार पौलुस को यहां लाया गया। फेस्तुस ने कहा,
राजा अग्रिप्पा और यहां उपस्थित हर एक जन देख ले कि यहूदियों ने मुझसे इस व्यक्ति की शिकायत की है। यरूशलेम और यहाँ के लोगों की यही मांग है कि इस इंसान को जिंदा नहीं रहने दिया जाए। लेकिन मैंने यह पाया है कि इसने मौत की सजा के लायक कोई गुनाह नहीं किया है। यह भी कि उसने चाहा कि ऑगस्टस के सामने उसके केस की सुनवाई हो, मैंने उसे वहां भेजने का इरादा किया। लेकिन मेरे पास ऐसा उसके खिलाफ कुछ सबूत नहीं है जिसे मैं अपने राजा को बताऊं। इसलिए राजा अग्रिप्पा, मैं उसे आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि जांच पड़ताल के बाद मेरे पास लिखकर भेजने के लिए कुछ होगा, क्योंकि मुझे इसमें कुछ समझदारी नहीं दिखती कि एक कैदी को बिना किसी आरोप पत्र दाखिल किए आपके पास भेजूं।